वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां शरणन्तिके। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरम् जाटं जागुदरोचि संविदधतं पट्टं परस्य सिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदयसप्तामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं श्री गुरु गौरांग कृपा। आज के हमारे यात्रा अक्रूर घाट भातराव एंड यज्ञस्थली मथुर ब्रिप्रगणे यज्ञस्थली ऐश्वर होए घुरे ऐसे ब्रह्मांड घाटे ते अपना सुने छन कि रकम होते अक्रूर ओखाने देखलें स्नान करते समय राधा कृष्ण और बलदेव के आर ऊपरो देखे छिलें आ कि रकम है यज्ञ पत्नीगण कृष्ण के नाना रकम होते व्यंजन पकवान ऐसागुली प्रस्तुत करे निये गे छिलें आ कृष्ण की रकम है प्रसन्न होए छिलें आ की रकम होते जागित विप्ररा निजे खेती गार दिए छिलें ए विषय ते भक्ते वेदांत तुमी पुरी महाराज संक्षेपे ते बोलबें। अक्रूर घाटर कथा बोल
ओम ज्ञान जिमिरां नस्तक ज्ञान जनसलापया चक्षुर के अंगे नतस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय
চৈতন্য মহাপ্রভু এসে হরিমন্দির মধ্যে সঙ্গে বলভদ্র সেবককে সঙ্গে নিয়ে এসে যখন বৃন্দাবন দর্শন করতে আসেন, তখন সেই সমস্ত বৃন্দাবনে চারিদিকে সবুজ অরণ্যের বনে ঘন বনারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। এখনকার মতন এত বাড়িভদ্র মন্দির ইত্যাদি ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশে দিব্য বৃন্দাবনের প্রকাশ ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু এই অক্রূর ঘাটে এখানে অবস্থান করেই প্রত্যহ বৃন্দাবনে দর্শনে আসতেন। পাশে গুলিতলায় ওই দিন তেঁতুল বৃক্ষের নিচে বসে তিনি অদ্ভুত ধাবাবিষ্ট হয়ে অজর নয়নে কৃষ্ণ বিরহ উপলব্ধি করতেন, ক্রন্দন করতেন। অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের সমস্ত রূপ প্রকাশ তার মধ্যে তখন দেখা গেছিল এবং সমস্ত জগৎবাসী তা থেকে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এই অক্রূর ঘাট যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে কংসের আদেশে অক্রূরকে গ্রহণ করলেন, কংস আদেশ দিলেন অক্রূর তুমি বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণ এবং বলরামকে রঙ্গালয়ে ধনুর্ভঙ্গ যজ্ঞ এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসো। পরিকল্পনা ছিল যে কৃষ্ণ বলরামকে এখানে নিয়ে এসে তাকে সামনাসামনি পরাস্ত করবেন, অসুর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ অত্যন্ত, তাই আমন্ত্রণের ভান করে তাদেরকে নিয়ে আসতে লাগলেন। তাকে দিয়ে নাতিনী পিতৃব্য অক্রূরকে দিয়ে কাজ সম্পন্ন করালেন। অক্রূর যখন বৃন্দাবন থেকে নন্দ মহারাজ গোপীদের নানা প্রকার সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কৃষ্ণ বলরামকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসছেন, তখন এই অক্রূর ঘাট এখানে এসে তিনি যমুনা নদীতে অব্রহ্ম হ্রদে এখানে স্নান করতে যান। এটি হল বৃন্দাবন এবং মথুরার সংযোগস্থল, বৃন্দাবনের শেষ প্রান্ত এবং মথুরার শেষ প্রান্ত। এখানে যখন যমুনায় স্নান করতে গেছেন, স্নান করে তিনি তার যে ব্রহ্ম সনাতন ব্রহ্মের উপাসনা তিনি মন্ত্র জপ করতে লেগেছেন, করতে করতে তিনি দর্শন করছেন যে কৃষ্ণ এবং বলরামকে তাকে ধ্যানে দর্শন করছেন। তিনি পরবর্তী ধ্যান থেকে প্রকাশে যে অভিম করে দেখছেন সেখানেও কৃষ্ণ বলরাম বর্তমান। তখন তিনি আবার সেই যমুনার মধ্যে স্নান করলেন, ডুবে সেখানেও দেখতে পেলেন কৃষ্ণ বলরাম। এই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য দর্শন করে তিনি বুঝলেন যে কৃষ্ণ বলরামই হচ্ছেন সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন। তখন সেই ভগবানের স্তব স্তুতি করে দণ্ডবত প্রণতি করলেন। এই স্থানে এক সময় নন্দ মহারাজ একাদশী দিবসে, একাদশী পরবর্তীকালে যে দ্বাদশী, দ্বাদশী চার ভাগে এক ভাগ সেটাও উপবাস যোগ্য, দ্বাদশী একাদশীর মধ্যে যুক্ত হয়েছে এমন সময় ব্রাহ্ম মুহূর্তের পূর্বে আসলিক কাল সেই রাত্রিকালে তিনি যমুনা স্নান করতে গেছেন। যমুনা স্নান করতে আসলিকালে
এটা না তো এখানে না উত্তানন্দ ঘাট ভদ্রবানের নিকটে এখানে
বলতে যাচ্ছেন যে যখন পরে ব্রজবাসীরা বলেছিল তোমার ধাম দেখতে যায় তখন এখানে ব্রহ্মহরে ধাম দেখে ওইটা বলতে
সেই সময় নন্দ মহারাজকে অরুণের অনুচর, অরুণ দেবের অনুচর তারা হরণ করে নিয়ে অরুণ লোকে নিয়ে চলে যান। অরুণ লোকে নিয়ে যাওয়ার পরে কৃষ্ণ সেই সমাচার শুনে তখন সেই যমুনার মধ্যে প্রবেশ করে অরুণ লোকে পৌঁছে যান। অরুণ লোকে পৌঁছে যেতে কৃষ্ণকে নানা প্রকার উপহার সম্ভার দিয়ে তাকে প্রসন্ন করে তার নিকটে তার অনুচরদের পিতাকে নিয়ে আসার জন্য যে অপরাধ হয়েছে সেই অপরাধ মার্জনা ইত্যাদি স্তব স্তুতি করে তাকে প্রসন্ন করলেন এবং পরম আদরের সঙ্গে নন্দ মহারাজকে কৃষ্ণের নিকট সমর্পণ করে দিলেন এবং কৃষ্ণকে নানা প্রকার অভিষেক ইত্যাদি বহু সমারোহে তাকে স্তব স্তুতি করলেন। এই সমস্ত নন্দ মহারাজ দর্শন করলেন, দর্শন করে পরে যখন আবার যমুনা থেকে চলে এলেন
imprints. He became overwhelmed in transcendental ecstasy. He came down from his chariot, began rolling and as he was absorbed in this way, he began to offer so many prayers to Sri Krishna. Then finally, he got on his chariot again and he approached the house of Nanda Maharaj in Nandagaon. And as he was coming there, then the residents of Vrindavan, they began to understand that a messenger of Kamsa had come. And the gopis and the gopas and Nanda Maharaj, Mother Yashoda, they all became very frightened that, oh, our beloved Krishna, he is now going to be taken away from us to Mathura. Because up to this time, Krishna had never left Vrindavan. So that night was a night full of anxiety. Sri Mother Yashoda was so absorbed in her beautiful son Krishna that actually she took him and she hid him away so that he could not be found. And the Brajagopis, they were also in complete anxiety of separation mood. So the following day, when Akrur, who had explained that it was necessary for him to bring Krishna to Mathura, he also explained that Kamsa was dealing in a very cruel way with the parents, with Vasudev and Devaki, keeping them imprisoned. So he wanted to bring Krishna and Balaram there. So that morning, when Akrur began to mount the chariot, oh, all the residents of Vrindavan came from all directions, and as we heard described very beautifully today by Shripad Ashram Maharaj, that all of the different residents of Vrindavan, the gopas, the gopis, the cows, the deer, the forest animals, all came to see Krishna. And they began lamenting and weeping and crying. And gradually all of them began fainting in every direction. And especially the Brajagopis, they were fainting everywhere. So now, Akrur, he thought, how will it be possible to take Krishna from here? But Krishna had very cunningly taken the gopis into a nearby kunja, and he reassured them that, I will return. Do not worry, I will return. So now Sri Krishna and Balaram finally mounted the chariot after Akrur had again inspired them that you must come to Mathura. The parents, your parents are being tortured by Kamsa. So now, Krishna and Balaram mounted the chariot, and now Akrur began trying to drive, but in all directions the Brajagopis, they were pulling the reins of the horses, and they were throwing their bodies in the trail in which the chariot was moving, so that the chariot could not move. And in this way, somehow or other, they were trying desperately to keep Krishna from leaving Vrindavan. But finally, somehow or other, Akrur managed to dodge all of these different bodies on the ground, and gradually he began to take off with Krishna and Balaram and his chariot off into the distance. And the Brijvasis stood like pillars, fainting on the ground and looking at the chariot of Kamsa disappear into the distance. So in this way, finally, Krishna and Balaram came on the chariot of Akrura to this place Akrura got, not so far from Mathura. And there, it became the evening time, the time for Sandhya, for performing Anik. So Akrur stopped there at this pond. There was a pond, like a bathing pot there. And Akrur now submerged himself into the pond. And when he dumped himself down inside the pond, meditating upon the mantra of his Ishtadev, Lord Narayan, who did he see? He saw Krishna and Balaram inside of the pond. So he was wondering, what is this? Instead of seeing his Ishtadev, Lord Narayan, with four arms, now he saw Krishna and Balaram there. Then he came up from the water and he glanced over at the chariot. And again he saw Krishna and Balaram sitting on the chariot. He was wondering, what is this? Then when he again came down into the pond, now he saw the manifestation of Lord Narayan lying on the bed of Anantashesh, being served by Lakshmi Devi, his lotus feet being massaged, and all great sages like Narada and Vyas and so many personified Vedas offering prayers to the Supreme Lord. So what is the significance of this? That actually, this is the borderline between Vrindavan and Mathura. They are completely worlds apart, although in miles they are not a very great distance. But in the measurement of rasa, from the viewpoint of rasa vichar, they are worlds and worlds of difference apart. And actually, it is known from Shastra that Vrindavanam Prityaja Padam Ekam Lagacchati, that Sri Krishna, Bhagavan himself, Swayam Bhagavan Krishna, the son of Mother Yashoda, the son of Nanda Maharaj, he never even takes one step out of Vrindavan. And also, Rohini Nandan, Baladev Prabhu, he is also an eternal resident of Braj, he also never takes one step out of Vrindavan. So therefore the question has to be asked, then who was going on the chariot of Akrur to go to Mathura? Actually, this was the expansion of Krishna, not the complete Purna Krishna, but the expansion of Krishna, known as Vasudev Nandana, and Baladev Prabhu, also known as Vasudev Nandana, Devaki Nandana. So in this way, now Akrur began to take the chariot to Mathura. And in this way, Krishna and Balaram went. Nanda Maharaj also came on chariots, later on bullock carts, and he was also going there to Mathura. That is another pastime. So in this way, this place of Purugat, it is a very highly auspicious place where the transcendental spiritual world was manifested to Akrur. And also in this place, Nanda Maharaj one time was performing the Ekadasi Vrat, and he was going to take bath at a particular time in the evening when it was not considered auspicious. It was actually a time when Asuric influences are prominent. So when he began to take bath in that same pond, what happened? The Varunadev, who is the demigod of all the waters, he came and his messengers came and took Vrata Maharaj. So now, Sri Krishna, searching for his father Nanda Maharaj, understood that Varuna Dev had taken him to Varuna Lok. So now Sri Krishna himself went there. And when he came there to Varuna Lok, now Varuna Dev, he began to offer so many prayers to Krishna. And he began to show so much honor and respect to Krishna as the Supreme Personality of Godhead. And Nanda Maharaj, who of course only ever sees Krishna as his dear little beloved son, he was very surprised. So when he came back, when Krishna brought him back after this, then Nanda Maharaj told to the Vrijvasis his experience, what he experienced. And now the Vrijvasis began to think, let us ask Krishna that we can have a darshan of the transcendental Parabrahma.
We can have darshan of the transcendental param dham of the spiritual world. So all of the Brijvasis, they approached Krishna, and Krishna took them to this very same place, Akrur Ghat, and he submerged the Brijvasis in the waters of Akrur Ghat, and there they had darshan. They actually witnessed. They witnessed the spiritual world, the eternal Goloka Vrindavan dham. And in this way,
they became aware that Sri Krishna was the manifestation of Lord Narayan. But actually, they did not accept this by rasa, because their relationship with Krishna, the Brijvasis, only ever see Krishna as the son of Nanda Maharaj. So even though they saw this manifestation of opulence and Aishwarya, they never lost their mood of feeling that Krishna is the beloved son of Nanda Maharaj. So that pastime took place there, and also one more pastime in the Leela of Chaitanya Mahaprabhu. When Chaitanya Mahaprabhu came to visit Sri Vrindavan Dham, actually he resided there at that very same place, Akrur Ghat. And every day in the morning, he would go from Akrur Ghat to this very location, where we are sitting here, right here at Imlital. and Chaitanya Mahaprabhu would sit underneath the Himlital tree and he would perform his kirtan and his bhajan of Shri Krishna and become immersed in moons of separation. And then again at night he would go back to Guru Ghat. So this highly auspicious place, the leelas of Chaitanya Mahaprabhu, the leelas of Krishna have taken place there. We are so fortunate to go there under the guidance of our beloved Guru Dev.
What Lok, Krishna showed to Nanda Baba and other Lok, other Goks. What was really that Lok? No Vrindavan. That is the point. It was only Golok. So they saw, but they saw so much affluence. They cannot call their Krishna, oh my dear son. So they shut their eyes and then thus they wanted to see their own lok, Vrindavan. And then they returned back and they saw Vrindavan. वास्तव में नंद बाबा को और कृपानंद इत्यादि दूसरे गोपों को जो उन्होंने सनातन लोक का दर्शन कराया वह गोलोक था, वृंदावन नहीं, इसलिए वहां पर उनकी संतुष्टि नहीं हुई। कृष्ण को राज राजेश्वर के रूप में देखा, द्वारकाधीश से भी बढ़ करके गोलोक में उनका ऐश्वर्य देखा, वो अपने पुत्र नहीं कर सकते थे, गोदी में नहीं ले सकते थे, इसलिए उनकी अरुचि हुई। तब उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब हम लोगों को लौटा लाइए। तो कृष्ण वहाँ वृंदावन में ले आए, वृंदावन को देखा, ये तो हमारा धाम है, बस कृष्ण को हम यहाँ पर पुत्र कर सकते हैं, सब प्रेम कर सकते हैं, ये इसलिए गोलोक से भी बढ़कर के द्वारका, द्वारका से भी बढ़कर के मथुरा, मथुरा से भी बढ़कर के वृंदावन, उसी वृंदावन को गोलोक, गोकुल, ब्रज, वृंदावन, ब्रजमंडल इत्यादि कहते हैं।
तो ये गोलोक का ऐश्वर्य द्वारका से भी अधिक है?
द्वारका से भी ऐश्वर्य द्वारका का है, गोलोक से भी। तम तम ये बोल लो जे कृष्ण वृंदावन देश छेड़े जानना बोले सर,
वो बोले नहीं, बोले
कृष्ण जखन अक्रूर कृष्ण के बजे थीके निये आसछेन नंदगांव थीके, ओई अक्रूर घाटे ते कृष्णचंद्र ओ अक्रूर संध्या करबेन, एई जने ते निये स्नान करते गियेछेन, जखन डूबे स्नान करे गियेछेन देखें जैसे तार मध्य कृष्ण और बलदेव के देखे, और ऊपर उठे ऐसे देखें जो रथर ऊपर तारा बसे आसे, तखन कहे जे सेटा की रकम है होलो, आबार तनी परीक्षा जन्य फेर आबार हुए छे, आबार वही रकम देखे। तात्पर्य कि वृंदावनम प्रत्यज्य कृष्ण पादेकम न गच्छति, वृंदावन छेड़े दिए कृष्ण को था जानना, एकमात्र बजे थे ওখানে অক্রূর যখন সন্ধ্যা নিয়ে করছেন, ওটা বর্ডার লাইন ব্রজের আর মথুরার, ওইখানে থেকে ওই ছলেতে কৃষ্ণ আর বলদেব, রোহিণী নন্দন বলদেব, যশোদানন্দন কৃষ্ণ আর রোহিণী নন্দন বলদেব, এরা ব্রজেতে চলে গেল অপ্রকট ভাবেতে থাকল, আর প্রকট ভাবেতে বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ এবং বলদেব এই দুজন, এরা যে এখানে জন্ম নিয়েছে ওরা ওখানে ফিরে আসবে, এই গূঢ় রহস্য সব। ভাতর যজ্ঞ পত্নীগণ, তুমি বলে দাও কে বলবে, তুমি বলতে পারো, আপনি ভাতরের কথা বলো।
এই সকাল বৃন্দ শোনো, প্রতিদিন তো আমরা খাবার নিয়ে আসি আর ওখানে গিয়ে বনে গিয়ে সেই সমস্ত আমরা আহার গ্রহণ করে থাকি, তবে আজকে কিছু আনতে হবে না, কেননা আমরা বেশি দূর যাব না, এই মথুরাই যাবো কাছাকাছি। হ্যাঁ, সুতরাং তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো, সুতরাং আর আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই খাবারের, অতগুলো পূজা হয়ে নয়। যাই হোক, সব সকালে এমনি চললেন আর কেউ আর কিছু খাবার না নেবেন, এদিক দিয়ে গোচারণ করতে করতে এই জাতি পত্নীগণের স্থান মানে যজ্ঞ স্থলের কাছাকাছি এসে গেছেন। যজ্ঞস্থল এবং জাতি পত্নীগণের কিন্তু একটুখানি দূর আছে, যজ্ঞস্থল আর জাতি পত্নীগণের স্থান কিন্তু এক জায়গায় নয়। যাই হোক, এখন দুপুর হয়েছে, খুদে পেয়েছে, সব সকালে তখন বলছেন কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহ দুষ্ট নির্বহন, হে কৃষ্ণ তুমি মহাবাহ, তোমার আমরা চরিত্র আমরা অনেক দেখেছি, বড় বড় অসুর এসে আক্রমণ করেছে আর তাদেরকে তুমি অনায়াসে সংহার করে আমাদেরকে উদ্ধার করেছ, সুতরাং আজ আমাদেরকে অসুর এসে আক্রমণ করেছে, সেই অসুরের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। কৃষ্ণ বললেন, কোথায় তোমাদের অসুর দেখাও দেখি? বলে, না না, এটা তুমি বাইরের থেকে দেখতে পাবে না, এ ভিতরের অসুর মানে ক্ষুধার অসুর, জঠরাগ্নির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ক্ষুধা চাই, তার এই অসুরকে যদি দমন করতে হয় তাহলে কি দিতে হবে? ক্ষুধার দ্রব্য দিতে হবে, খাবার দিতে হবে, তাহলে খাবারটাই আমাদের। পরোক্ষভাবে কৃষ্ণ নিরূপায় চতুর্বাক্য চারটে আছে, তদ্রূপটা স্বভাবগুলো সেইরূপ ভাবেই ওরা ওই বাক্য প্রয়োগ করছে। যাই হোক, কৃষ্ণ বলেন, কোন চিন্তা নেই, অতি বিপ্রবল জাতি বিপ্রবল ওখানে যোগ করছে, হ্যাঁ তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অন্ন ভিক্ষা করো, কেননা এই জাতি বিপ্রবল ওরা বিরাট যোগ করছে, প্রচুর পরিমাণে তাদের পরিশ্রম হচ্ছে, কিন্তু ওই ফলটা হচ্ছে সামান্য ক্ষুদ্র, ভুড়ি কর্মাণি ফলটা হচ্ছে ক্ষুদ্র, কেননা ওই ফল ক্ষুদ্র এই জন্য বললেন যে যজ্ঞ করছে ওরা সর্বকর্ম না স্বর্গ লাভ করার করবার জন্যই যজ্ঞ করছেন, তা বলছেন যে স্বর্গে গিয়ে আবার কতদিন থাকবেন, ওইখানে পুণ্যের মর্ত লবণ বিসঙ্গে এবং ত্রয় ধর্ম অনুপ্রপন্না তথাকথন সর্বম লবণে, এই জন্য স্বর্গ গিয়ে ওখানে ওখানে থাকতে পারবে না, আবার ফিরে আসতে হবে, সুতরাং কিন্তু ওদেরকে এখন কিছুতেই বোঝানো যাবে না। এই জন্যে তিনি বললেন যে যাও, ওদেরকে কৃপা করবার জন্য সব সভাবৃন্দকে তিনি সেখানে পাঠিয়ে দিলেন, ওরা গিয়ে ভোগ্রগণ শুনুন শুনুন কৃষ্ণ, প্রথমে বলছেন যে কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন যে আমার কথা বলবে না, হ্যাঁ ওই বলদেবের কথা বলবেন, তারপরে ওরা গিয়ে বলছেন এখানে বলরাম আর অন্যান্য সভাবৃন্দ সবাই এখানে আসছেন আর এই গোচারণ করতে করতে ওদের পূজা পেয়েছে, সুতরাং আপনারা কিছু আর ওদের ভিখারির কথা কে শোনে, কোনো কর্ণপাত করলেন না, বারবার বলা সত্ত্বেও কিছুই শোনা কিছু উত্তর দিলেন না, ওরা একটু দুঃখিত মনে তারা ফিরে এসে কৃষ্ণকে বলেন যে কৃষ্ণ তুমি এমন একটা জায়গায় পাঠালে যে আমাদের কিছুই দিল না, কৃষ্ণ বলেন যে তোমরা চিন্তা করো না, তোমরা ওই ভিখারি লোক, এই জন্য এক বাড়িতে দেবে না আর এক বাড়িতে দেবে, এই জন্য নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, তোমরা জাতি পিত্র পত্নীগণের কাছে যাও, এবার গিয়ে কিন্তু আমার কথাটাই ওদের কাছে বলবে, কেননা এই জাতি পিত্র পত্নীগণ বহুদিন ধরে ভগবান কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করেছিল কিন্তু কৃষ্ণকে দর্শন করেনি, এ শ্রবণ করেন আর অনুকীর্তন করেন, এ শ্রবণ এবং পরস্পরে মিলে কৃষ্ণের গুণকীর্তন করেন, এটি হচ্ছে ওদের পরম সাধন, এই সাধনের আজ প্রভুত্ব ফল অন্তিম সময় এসে উপস্থিত হয়েছে, এই জন্য কৃষ্ণ বললেন যে এক কার্যে করেন কৃষ্ণ কার্য পাশ্চাৎ, সুতরাং ওই দিন আজ ওরা ভগবানের কৃপা লাভ করার দিন এসে গেছে, তাই বলবান পাঠা শতাব্দীর সবাই চললেন এবার জাতি বিপ্র পত্নী জনের কাছে গিয়ে বললেন ভো ভো বিপ্র পত্নী
শুনুন শ্রীনন্দন শ্রীনন্দন শুনুন শুনুন আপনারা অদ্রি কৃষ্ণ এবং বলরাম এবং সকাতৃন্দ সবাই প্রচারণ করছেন তা ওদের ক্ষুধা পেয়েছে সুতরাং ওরা আমাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের কাছে আপনারা কিছু খাওয়ার দ্রব্য বললেন বাবা আজ আমাদের এমন সৌভাগ্য আজ কৃষ্ণ অদরি এসেছেন আর কৃষ্ণের জন্য খাবার তিনি নিয়ে দিচ্ছে এনেছেন এই জন্য ভক্তের কাছে ভগবান চেয়েছে এখান অভক্তের কোন দ্রব্য ভগবান পূরণই রাখে এই জন্য অভক্তের কোন দ্রব্য তিনি গ্রহণ করেন না আর ভক্তের জন্য তিনি ভক্তের দ্রব্য গ্রহণ করে ভক্তকে কৃতার্থ করবার জন্য তিনি তার সকাতৃন্দকে ভক্তের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন আদি তৈরি করে বড় বড় থালার মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে ওরা চলছে সকাতৃন্দ বলছে না 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 আপনাদের এত কষ্ট করতে হবে না আমাদেরকে কৃষ্ণ পাঠিয়েছেন আমরাই নিয়ে যাব ওরা তখন বলে না না ভগবানের সেবা আমাদের নিজ হাতেই করতে হয় ওটা লোকের দ্বারা হয় না এই জন্য লোকের দ্বারা বা মাইনে করে রেখে দিয়ে কোনো ব্যক্তির দ্বারা ঠাকুরের সেবা ওটা ঠিক ঠিক ছাড় ঠাকুর সেবা হয় না ঠাকুর সেবা যদি করতে হয় নিজেই করতে হবে যেটা অমর সিংহাসনে গিয়েছে যাই হোক এখন ওরা চললেন সব নিয়ে যে আপনারা কোনো চিন্তা করতে হবে যে বালকবৃন্দ আপনারা চলে যান আমরা চলে যাচ্ছি সব বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধিযুক্ত খাদ্য দ্রব্য তৈরি করে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাপার হলো রাস্তা কিন্তু একটাই যেটা মানে যজ্ঞস্থলের কাজ দিয়ে যেতে হয় অন্য রাস্তা থাকলে ওরা চলে যেতেন অন্য রাস্তা দিয়ে তাহলে আর এরা কিছু বুঝতে পারতেন না কিন্তু রাস্তা ওই দিকে ওরা চলছেন এখন এরা তো শুধু ইন্দ্রের সোহাগ অগ্নের সোহাগ বরুণের সোহাগ এই সোহাগ সোহাগ শুরু করে দিয়েছেন তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমরা কৃষ্ণ সভা করার জন্য যাচ্ছি। না না তোমরা দেখতে পারবে না। বিচারের মধ্যে বলছেন যে পতি যদি প্রতিকূল তাহলে তাকে তার বাক্য মানানো চলবে না কারণ আমরা এই মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি শুধু ভগবানের ভজন করার জন্য আর সেই পতি যদি ভগবানের ভজনে বাধা দেন তাহলে সেই পতি পতি নয় পিতা পিতা নয় এই জন্য বলছেন যে তাহলে ঠিক আছে যদি তোমরা যদি জোর করে যেতে চাও তাহলে কিন্তু এ বাড়িতে আর তোমরা ফিরে আসতে পারবে না যদি ঠিক আছে আমরা আর আসবো না কারণ ওরা জানে যে ভগবানের সান্নিধ্যে ভগবান নিজে বলেছেন যে আমার কাছে এলে তাকে আর এই সংসার কারাগারে দুঃখময় সংসারে আর ফিরে যেতে হয় না সুতরাং আমরা তো সেটা বিচার শুনেছি সুতরাং আমরা ভগবানের সান্নিধ্যে যাচ্ছি আর আমরা ফিরে আসবো না তোমরা কোনো চিন্তা করো না এইরূপ ভাবে সবাই গেলেন একজনকে আটকিয়ে দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তীকালে উনি নিজে আত্মদেহে ভগবানের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন যাই হোক এবার গিয়ে সব খাবার দ্রব্য নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণের সান্নিধ্যে উপনীত করে দিলেন কৃষ্ণ দেখে খুব আনন্দিত আর সব সকালে বললেন যে তোমার সবাই বসো সবাই বসো না ওরা পরিদর্শন করে দিলেন খাওয়া দাওয়া সব ভালো এবার ওরা মনে করছে যদ্বর্ত নিবর্তন্তে তদ্ধমম পরমম কিন্তু এবার কৃষ্ণ বলছেন যে এবার তোমরা তো আমাদের খেয়ে দিলে তা তোমরা এবার চলে যাও আমরা তো যাবো না আর গেলে তো ওরা ঘরে আমাদের তুলবে না তুমি না না তোমরা কোনো চিন্তা করো না হ্যাঁ তুমি না আমরা যাবো না কেন কারণ কৃষ্ণ তিনি যদাদাই ধর্ম সকলের ভবতি ভারত অভ্যুত্থান অধর্ম সুতরাং এখন কৃপা বন্ধ কি করে, এখন করলে হবে না। তবে তিনি বললেন যে দেখো তোমরা এইরূপ ভাবে উৎকণ্ঠিত ভাবে তোমরা আমার চিন্তা করো, চিন্তা করতে করতে তোমাদের এই দেহটা নষ্ট হয়ে যাবে, পরবর্তীকালে তোমরা আবার আমার যে নিয়ম আছে যে ধারা আমি এই জগতে প্রবর্তিত করেছি সেই গোপগৃহে গিয়ে তোমাদের জন্ম হবে, তারপর আমি তোমাদেরকে কৃপা করব। কারণ কৃষ্ণ ওই সময় যদি করেন কৃপা তাহলে তো জগতের লোক সবাই তো কেঁচে বেরোবেন কৃষ্ণকে, যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়ে তিনি মর্যাদা নষ্ট করছেন কেন? এই জন্যে ভগবান তিনি কর্তুম অকর্তুম অন্যতা কর্তুম স্বয়ং ভগবান, এই জন্য তিনি মর্যাদা সংরক্ষণ করলেন। আর ওদেরকেও সেইভাবে উৎসাহিত করলেন যে তোমরা কোনো চিন্তা করো না, তারপরে আমরা ফিরে যাবো কি করে, বলে না না তোমাদের অপেক্ষায় ওরা তোমাদের চিন্তা করছে। এই জন্যে ভক্তের চিন্তা করার জন্য ওদের হৃদয় স্ফূর্ত হয়ে গেল এই জাতি বিপ্লব, মানে এই জন্য পরবর্তীকালে ওরা ওদেরকে সেই বৃদ্ধ পত্নীগণকে ওরা সাদর আহ্বান করে বাড়িতে নিয়ে চললেন আর বললেন ভিক আমরা তো বেদাধ্যয়ন করছি এত কিছু করেছি কিন্তু ভগবানকে সাক্ষাৎ পেয়েও আমরা কিন্তু তাকে বুঝতে পারিনি, আর তোমরা কিছুই করো করো নি, গুরুগৃহে বাস করো নাই, বেদ অধ্যয়ন করা তো অধ্যয়ন কেন, বেদ তো বেদ শ্রবণ করা তখন খুব কঠোর ছিল মেয়েদের জন্য। এই জন্য বললেন যে তোমরা কি করে ভগবানের প্রতি অনুরাগ যুক্ত হয়ে ভগবানকে সাক্ষাৎ ভাবে তোমরা খাওয়ালে, হ্যাঁ ভগবানের কৃপা লাভ করলে, তোমরা আমাদের উপরে কৃপা করো তাহলে আমাদের এই ব্রাহ্মণের অভিমান যেটা আছে এটা দূর হয়ে আমরা ভগবানের কৃপা যেন আমরা লাভ করি। সুতরাং এর মধ্যে এটাই শিক্ষা আমাদের দিলেন যে আমাদের অভিমান থাকলে হবে না, এই অভিমানটা হচ্ছে ভজন সাধনের একদম বিরোধী, মনুষ্য জীবনকে সফল করতে পারে।
বেশ সুন্দর হয়েছে, শ্যামরানী যোগের পত্নী ইন ইংলিশ, ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট হি টোল্ড,
ওম জ্ঞানম চ বিরন্দস্য জ্ঞানম চ মসমাদয়ম চক্ষুরুম মিলিতম য়েন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। First, I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Bhikshu Gurudev, Ichilila Pravishta Om Vishnu Pai, as though it is such a Sri Srimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Bhikshu Gurudev, Om Vishnu Pai, as though it is such a Sri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to all of our disciplic succession and all the assembled devotees. Srila Gurudev has ordered me to speak a few words about the Jagyapagnis. So very near to a Kuragat, we find Jagyasthali, near where Krishna was cowering with his friends and the cows, playing so many different games, when once the coward boys told Krishna, "We're very hungry. We want you to kill a demon. What demon is that? The demon of hunger in our stomach. And then, if you can do that, you'll be very successful at killing demons, because you're known as the killer of the demons." Krishna told them that there are some Jagyat Brahmanas, Brahmanas who are performing sacrificial rituals, and if you go to them just at this time, this is the exact right time where they can give you some prasadam. But don't mention me first, mention Baladev, because these Jagyat Brahmanas are very puffed up, as one is in the caste system, with the material conception that I'm in the highest caste, the Brahmanas. So at least Baladeva is a Kshatriya, and they'll think that I'm very low because I'm just a Vaishya. So why don't you ask in Baladeva's name? Ask for him first, although tell him that I've sent you as well. So the coward boys went to the Jagi Brahmanas, and being very, very humble, they fell at their feet and honored them greatly. And they begged for Krishna and Balaram, saying that they were very hungry. And they also praised the Brahmanas, saying that we know that you know exactly what is Dharma and what is Adharma, and how you should give to others in charity. And we know you know that this is the exact right time to give in charity. So the Brahmanas were so puffed up that they wouldn't even give a yes or a no. They totally ignored the coward boys. So the coward boys were very despondent, and they went back to Krishna and Balaram. And Krishna, instead of himself being dejected, he started laughing. He wanted to show that why waste time being angry at some materialistic person? It's not worth it. And he also wanted to tell them that this is the way of begging, that you can't expect a yes at every home that you beg at. So now, it's best if you go to their wives, because their wives are fully devoted to me. The wives had been for some long time hearing about Krishna by other residents, from other residents of Vrindavan. And hearing, gradually they developed unalloyed devotion, free from any caste or I'm the wife of so-and-so, I'm the mother of so-and-so, just I have a great greed to get Krishna's darshan. So go to the wives of the Brahmanas, and they'll very, very happily, by hearing the name of myself and Balaram, they'll very happily give you the prasadam. So as soon as the coward boys went to the wives of the Brahmanas, having heard about Krishna for a long time, and now having great greed for his darshan, they became overwhelmed with delight and told the boys, no need for you to take it, we'll ourselves bring all the foodstuffs to Krishna and Balaram, which they did in many large plates. They brought all four kinds of foodstuff, that which is swallowed, that which is sucked, that which is licked up, that which is chewed. And they came in great ecstasy to Krishna and Balaram. Krishna did to the Brahmanis, he was very happy to see them and very affected by their praying. And he did to them very similar what he did to the gopis when he called them by playing on his flute. He told them, oh, so now you've come and thank you very much for this prasadam. Now you should go home. So when he had told the gopis that, when the gopis heard from him all kinds of instructions how the greatest elevated position for a woman is to be chaste to her husband, even if he's lame, even if he's very cruel or angry, he has a bad character, even if he's toothless, black, ugly, still the highest duty of a wife is to serve the husband. So when the gopis had heard this from Krishna, they said, oh, this is a very wonderful instruction. And this instruction, given with so much evidence from the Vedas and with consideration of societal rules and regulations, this proves that you are our guru. And we know that the first person that has to be served is guru. Husbands can come later. God can become later. But first thing is to serve our guru. So we'll stay here and serve you. So Krishna said, well, don't you know that I'm the Supreme Personality of Godhead? So then they said, yes, we've heard that you said in the Bhagavad Gita, then you reciprocate with the love of your devotees. So if you now don't reciprocate with us, then a great sin will come upon your head. So Krishna was trying to do this to the Jagyapatnis also. He told them that the greatest success is to serve one's self-interest. One has to know what is one's self. And he indicated that I am the Supreme Self. So you should follow my instructions and go back to your husbands who need your assistance and their sacrifice. The wife is considered the half body of the husband, and the husband cannot perform sacrifices successfully without his wife. So they were trying to pose arguments just like the gopis, but they didn't have the qualification of the gopis. As you've heard from the Vaishnavas today and from Srila Gurudev, Jagyasthali, just like a pura god, is located on the border of Vrindavan and Mathura. Although they're only two fingers apart, because the border of Vrindavan meets with the border of Mathura, still there's so much difference. They're so far apart. Radharani never went to Mathura. So they're far apart because of mood. In Vrindavan there's so much sweetness, even though there's actually more opulence than there is in Mathura, or more opulence than there is in Dwarka, more opulence than there is in Vaikuntha even. There's so much sweetness that opulence is not tasted. But in Mathura, that opulence is tasted. So Yogamaya inspired Krishna within his heart that although he was impressed by their praying, he manifested his opulence to them and told them that, insisted that they go back to their husbands and that he's the Supreme Personality of Godhead. And that went into their hearts because they are not Vrijvasis, but they're Maturavasis. So they acquiesced with some arguments. They tried to argue. But because of the sense of opulence, and only the Itidrik Svalilavir Anandapunde, Krishna wants to show all the Maturavasis, the Dwarkavasis, the Vaikunthavasis, that I'm only controlled by the love of the Vrijvasis, and I engage in all kinds of loving pastimes with them. And I want to bring everyone up to appreciate them and have the greed to serve like them. So first the Nagapatni said, well, if we go home to our husbands, they're not going to accept us anyway. They told us that if you go, then you might as well not come back. In fact, they tried to threaten us. And some Jagyapatnis were locked in their rooms as the gopis were. So they also left their material bodies and went to Krishna. But because of their sense of opulence, they had some humility, they had some respect there. And they said, well, we know that although they had Madhurya Ras, a touch in their heart, they said, we know that we're not qualified to engage with you in Madhurya Leela. We know that we're not qualified like the gopis. So we won't even go to your village, we'll just stay in the forest and we'll put on the heads the garlands that you share with the gopis and that you toss away. So because of their somewhat of awe and reverence, even though they had so much praying, that as soon as they saw Krishna and they saw, as Sukadeva Goswami described, Shamam Sriranya Paridim Panamam Yavarha, that Krishna appeared to them in a very beautiful cloud-like complexion. And his yellow pitambara was just like a streak of lightning. And his curly hair was just like bumblebees bouncing upon his face. His head was bedecked with peacock feathers and sprigs of buds of various flowers and leaves. He wore very beautiful forest garlands. So they were very attracted by him, absorbed in him. And they saw that he was standing with his arm on the shoulder of his friend, and twirling a gray lotus flower.
Krishna was
saying to them that I know that your hearts are twirling for me, and I'm captivated that in my heart. But because of their opulence, they finally acquiesced and went back to their husbands. Krishna told them that I'm speaking in your husbands' hearts that they will not be angry with you. So when they went back, their husbands not only weren't angry with them, but they were so much lamenting that they had not respected Krishna Balaram, who all the opulences and all the universes are within his body. And yet, out of his desire to help them become bhaktas, he was begging from them. So they said, fie on our brahminical birth, fie on our having the sacred thread, fie on our knowing all the Vedic sacrifices. These brahmanis, although they did no austerities like us, although they're simple wives, they do not know the Vedas like us, yet because they have so much devotion to the Supreme Personality of Godhead, they're so much superior to us. So they lamented and repented, and now they wanted to go to Krishna just like their wives did. But they were afraid of Kamsa, that if Kamsa's spies find out, then Kamsa will arrange to have us killed. So they ended up not going. So because of so many obstacles due to their anartas and their pride, they were covered by fear, whereas their wives didn't care if they were killed, didn't care about anything. So there's so many instructions in these beautiful leelas of Krishna. Tattva is included in leela. And when we hear them from the pure devotees, like Srila Gurudev, then something comes in our heart and a greed comes to serve like the Brijvasis and become free from our greed to serve our material senses.
गोपियां भी कृष्ण की बंसी सुनकर कृष्ण के निकट गईं और कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम अपने पतियों की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। लंगड़ा लूला निर्धन गरीब दरिद्र जैसा भी हो, पतियों को सेवा करने से। किंतु गोपियां नहीं लौटी और उनको उत्तर पर प्रत्युत्तर देती गईं और अंत में कृष्ण ने उनके साथ में रास किया। जब पत्नी भी गई अपने पतियों को छोड़ करके, घर बार सब छोड़ करके गई, किंतु कृष्ण ने ग्रहण नहीं किया। इसका कारण ये है, ग्रहण तो किया किंतु उन्होंने उनको गोपियों जैसे रास इत्यादि में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि कृष्ण धर्म की मर्यादा प्रतिष्ठित करने के लिए आए हैं। वे हैं ब्राह्मणी। यदि कोई गोपी हो और वह गोपी भी छोटी उम्र की हो, 12, 13, 14 वर्ष की, कहीं शादी नहीं हुई हो, कोई बच्चा नहीं हो, सब गुण सद्गत गुण संपन्न, ऐसी गोपी के साथ में रास इत्यादि कर सकते हैं, उनके साथ में लीलाएं कर सकते हैं। किंतु ये तो ब्राह्मणी है, इसलिए धर्म रक्षा के लिए ब्राह्मणियों को उन्होंने लौटा दिया, किंतु लौटाया नहीं। ऊपर से तो लौटाया, किंतु भीतर से योग माया के प्रभाव से ये सुनिश्चित कर दिया कि तुम लोग दूसरे जन्म में गोपी होकर के आएगी, उस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। दंडकारण्य निवासी 60,000 ऋषि लोग यदि उनको पाने की इच्छा कर रहे हैं तो उनको गोपी रूप मिला, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा? उसमें कुछ सामूहिक रूप में आई, कुछ
जौतकी
रूप में सबको कृपा कृष्ण ने किया, उनकी इच्छा हुई तो इनको भी जरूर करेंगे, किंतु दूसरे जन्म में जबकि ये गोपी ग्रहण होकर। माधुर्य कादंबिनी, एनी नीड ऑफ ट्रांसलेशन?
Yeah. Again, just quickly, when the gopis heard the flute of Sri Krishna, then they gave up everything and came running to him. At that time, Sri Krishna instructed the gopis, even if your husband is ugly, black, lame, poor, or all of the above, still it's a woman's duty to serve him. But the gopis, they still were able to perform Rasa Lila with Sri Krishna. On the other hand, the Yagyapatis also left everything and came to Krishna, but Krishna persuaded them to return home and serve their husbands. Thus we see that even though the Yagyapatis were accepted by Sri Krishna, they were never accepted fully like the gopis were, and Krishna never performed Rasa with them. Why is this? Sri Krishna came to this world to establish Dharma and Marjada, proper behavior. Thus, Krishna formed rafts with the gopis who were very young at that time, being 12, 13 or 14. Either they were not married or they had no children. Therefore, Krishna performed rafts with them. But on the other hand, to perform rafts later with the wives of the brahmanas who were worshipped in society would not be proper for Sri Krishna. Therefore, in order to protect religious principles, he asked them to return home to their husbands. And it must be that in their next life, those brahmanis could take birth as gopis and perform Rasa Lila with Sri Krishna. After all, if Krishna could fulfill the desires of the thousands of sadhus residing in the Dandakaranya forests, then why he could not fulfill the prayers of fulfill the desires of the wives of the brahmanas? Gopremanandu.
Madhurya Kadambini. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, क्लेश अपनी शुभदा, भक्ति की साधना आरंभ करने से ही सब अशुभ दूर हो जाते हैं, उसमें अज्ञान, अस्मिता इत्यादि जितने दोष हैं और प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट भी जितने पाप हैं सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी के संबंध में विस्तृत रूप से बतला रहे हैं, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र त्रिश एक काल। ये अशुभ की निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति प्राप्ति एक ही समय में होती है। पहले कहा जा चुका है कि साधन भक्ति, वैधि भक्ति अथवा रागानुगा भक्ति प्रारंभिक अवस्था में ही क्लेशों को नाश करने वाली और समस्त शुभ गुणों को उत्पन्न करने वाली है। अब शंका हो सकती है कि साधन भक्ति क्लेशों का नाश और शुभ गुणों का प्रदान दोनों काम का एक साथ ही में होता है, या पहले भक्ति के विघ्न नाश हो जाते हैं तब शुभ होता है। इसके लिए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भागवत का प्रमाण देकर, भक्ति परार्ष परेशा अनुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक के काल प्रपद्यमान यथाश्मत सुतुष्ट पुष्ट कुदुपाय अनुभाषण। जैसे भोजन किया जाता है, प्रति ग्रास जो खा रहे हैं उसके साथ में ही तृप्ति अथवा सुख पुष्टि जीवनी शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ में होते हैं। यहाँ तक कि एक चावल का कण या रोटी का टुकड़ा खाने पर भी साथ ही साथ वैसा ही उसी रूप में ये तीनों चीजें होंगी। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण दे करके भक्ति भक्ति का साधन करता है, परेश अनुभवों और भगवान के प्रति प्रेम प्रेष अनुभव अनुभव जिनका है और प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और अतिरिक्त विषयों में वैराग्य होगा ही। यदि उसको तत्वज्ञान नहीं होता है, विषयों में वैराग्य नहीं होता है, भगवान की अनुभूति नहीं होती, तो भक्ति का साधन नहीं कर रहा है। हम लोगों में बहुत से लोग हैं हम लोगों के साथ में, ऊपर से मालूम होता है कि हरिनाम कर रहे हैं, किंतु वो विषयों का चिंतन करते हैं, भक्ति का नहीं। इसलिए उनको संसारिक वासनाएं उनके हृदय में आ जाती हैं और भक्ति का फल उनको नहीं मिलता है। उसी प्रकार से भक्ति लता की क्लेश अग्नि और शुभदा दोनों पत्तियां एक काल में पैदा होने पर भी उनकी वृद्धि के तारतम्य से वो जितना ही साधन बढ़ता जाएगा और विद्या और क्लेश उतने परिमाण में दूर होते जाएंगे और शुभ गुण वृत्तियां भी उतने परिमाण में आते जाएंगे। फिर से समझो, जितने प्रकार में भक्ति अधिक रूप में भक्ति का साधन होगा, उतने ही परिमाण में अनर्थ दूर होंगे और शुभ गण साथ ही साथ में आएंगे, एक साथ में। किंतु इसमें एक क्रम है, किंतु क्रम इतना सूक्ष्म है, जैसे हम एक ग्रास अन्न खाया हम नहीं समझ सकते हैं कि हमारा पेट कुछ भरा, दो ग्रास चार ग्रास खाना आधा खाने पर मालूम हो जाए और पेट भरने को है, अब पूरा जब खा लेंगे और पेट भर गया, और चाहिए कुछ रसगुल्ला एक, नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, खाने से फिर उसकी विरक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें भी एक क्रम है जिसको इतना सूक्ष्म और दुर्लभ है कि सहज बोध गम्य नहीं मालूम नहीं होता है, किंतु है। भोजन में प्रवृत्त व्यक्ति के ग्रास के साथ ही युगपत तुष्टि पुष्टि और उदार निवृत्ति आंशिक रूप में हुआ, जितना खाएंगे अंश रूप में होता है। केवल यही नहीं, एक एक अन्न के भीतर में वो शक्ति है, किंतु हमको उस समय स्तर का मालूम नहीं होता। भक्ति के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। कभी कभी हम लोग विचार करते हैं कि श्रद्धा भी हमारे अंदर में आई है कि नहीं। इतना दिन 20, 25, 30, 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए साधन किया, भगवत अनुभूति कुछ नहीं हुई, कुछ आनंद इसमें नहीं आ रहा, किंतु उस समय में भी जो सच्चे साधक हैं कुछ न कुछ भक्ति के साधन के तारतम्य से उनमें भगवान की अनुभूति हुई। यदि हम कहें द्वारका में रुक्मिणी के साथ में, रुक्मिणी जैसे ही आप पटरानी कृष्ण की हो जाइए, तो मैं समझता हूं जी कोई भी नहीं, क्यों, कुछ न कुछ अनुभूति आई है, कुछ विषयों के प्रति विरक्ति भी आई है जी, और हम कुछ नहीं चाहते हैं, राधा दास्य के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं जगत में लेना चाहते, तो इसलिए कुछ अनुभूति हुई है, विषयों से वैराग्य भी हुआ है, किंतु सबको नहीं कह सकते जो सच्चे साधन कर रहे हैं उनके लिए। तत्र श्रद्धा उदय, ग्रंथकार श्रील चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति का स्वरूप बतलाया, भक्ति की स्वरूप प्रकाशता, भक्ति के ऊपर किसी का अंश किसी का अंकुश नहीं है, स्वतंत्र इच्छामयी जहां तहां भी वो प्रकट हो सकती है, पापी लोगों के हृदय में भी हो सकती है और बुद्धिमान सदाचारी जागृत ब्राह्मण जैसे लोगों के हृदय में भी भक्ति नहीं हो सकती। बुद्धि विद्या बल के ऊपर में निर्भर नहीं करती। हाँ, श्रद्धा जरूर होना चाहिए, श्रद्धा नहीं रहने से भक्ति कभी भी नहीं आएगी। अब यहाँ ग्रंथ के मूल विषय प्रतिपाद्य विषय अर्थात साधन भक्ति के स्तर का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो स्तर में है श्रद्धा, अब आरंभ करें। श्रद्धा ही भक्ति साधन का प्रथम स्तर है। शरणागति भक्ति नहीं है, उसका द्वार है, द्वार तक पहुंचा देती है बस। और साधन का जब वहां पर है तो श्रद्धा प्रथम सीढ़ी है, सोपान है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहला सोपान श्रद्धा है। भक्ति सर्वज्ञानी सार्वभौम साधना है। भक्ति में सभी का प्राणी मात्र का अधिकार है। कृष्ण भजन है सवे अधिकारी, किवा विप्र किवा शूद्र की पुरुष की नारी, चाहे वो नारी हो पुरुष हो विप्र हो, समस्त लोग ही पापी हो, जगाई मधाई जैसा व्यक्ति हो, अजामिल जैसा पापी हो, सभी लोग जिनको श्रद्धा हो गई बस वो अधिकारी हो गई। अतएव भक्ति साधन में जाति कुल स्थान देश काल इत्यादि, यहाँ तक कि अमेरिका में इंग्लैंड में कहीं भी भक्ति हो सकती है। आज वहाँ के हजारों लोग आ रहे हैं, भक्ति की बात सुन करके कुछ श्रद्धा का उदय हुआ, इसलिए और भी भक्ति और बड़े अनुभूति हो और अंत में हम लोग प्रेम पा सके, इसके लिए लोग आते हैं यहाँ पर। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहा गया, श्रद्धावान जन हन भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकार कहाँ है? बस श्रद्धा जिसको हो गई, कोई भी हो, प्राणी मात्र, चाहे बंदर भालू हो, चाहे कुछ भी, जहां पर चेतना का विकास है मनुष्य में अधिक है, इसलिए सभी लोग, सभी जाति के लोग पापी तापी सभी अधिकारी हैं। केवल भक्ति की साधना में ही नहीं, कर्म ज्ञान योग तपस्या में भी यदि भक्ति श्रद्धा नहीं है तो फल नहीं दे सकता। अश्रद्धया उत्तम दत्तम तपस्तम कृतंच जत सद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य प्रत्यग्भो इह। हे पार्थ, अश्रद्धा पूर्वक जो होम दान अन्यान्य कर्म अनुष्ठित होते हैं वे सब असत हैं, उनका कोई भी फल नहीं है, बेकार व्यर्थ के हैं। गीता के इस वचन के अनुसार में श्रद्धा विहीन सभी भक्ति सभी साधनाएं निष्फल हैं। महर्षि पातंजल ने भी लिखा है, श्रद्धा चेत संप्रसाद साही जननी व कल्याणी योगिनम पाति। चित्त की संप्रसन्नता, इसी को श्रद्धा कहते हैं। चित्त की प्रसन्नता करने से चित्त में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया। परमार्थ के विषय में कृष्ण ही स्वयं भगवान है और उनकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है, यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया, इसी का नाम श्रद्धा है। इसलिए किसी विषय में संदेह नष्ट हो जाए और वस्तु के विषय में विश्वास हो जाए उसको श्रद्धा कहते हैं। हमारे भागवत या कहाँ लिखा भी है, श्रद्धा तो अन्नो उपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्र वृत्ति विशेष। श्रद्धा हेतु अन्न उपाय वर्ज, सब उपायों को दूर करके कृष्ण भक्ति करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, इस शास्त्र वाणी के ऊपर में विश्वास पूर्ण रूप से हो जाएगा। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति ही साधन करके क्रमशः उन्नत हो सकता है। यहाँ पर श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होगी उसी परिमाण में साधक का चित्त अनुकूल होकर साधक को सिद्धि की ओर अग्रसर होगा। जितनी परिमाण में साधकों का हृदय चित्त अनुकूल होगा उतने ही रूप में सिद्धि की तरफ में वो अग्रसर होगा। कर्म योग ज्ञान इत्यादि करने में भी श्रद्धा की जरूरी है, किंतु भक्ति के साधन में जो श्रद्धा होती है वो विलक्षण होती है, वह निर्गुण चिन्मयी भक्ति साधन का प्रथम स्तर और सोपान है। आदौ श्रद्धा ततः साधु श्रद्धा, यहीं से भक्ति आरंभ हो गई यदि श्रद्धा उदित हो गया। हाँ योग
So, in Uttapatti, the first stage is called Sadhana. In this stage, then all types of inauspiciousness is destroyed. We discussed the five types of klesh, beginning with avidya, asmita, raag, dvesh, and abhinivesh. These are all destroyed, as well as the four types of pap, or sinful activity, prarabdha, aparabdha, kund, and nij. Therefore, how is this arranged? We have heard, and we are hearing, that the attainment of auspiciousness is simultaneous to the amount of inauspiciousness which is destroyed. This is evidence in the Srimad Bhagavatam, Bhakti Paravaresh and Bhavavirakta. We discussed this last night. Therefore, both of these symptoms, the destruction of klesh, obstacles, and the attainment of auspiciousness, are both there for both Raghuruga Bhakti and Vaidyavakti. Therefore, how does this occur? Are both of them occur simultaneously? Or is it first that inauspicious things are destroyed and then auspiciousness is attained? Therefore, an example is given in the Srimad Bhagavatam. Just like in eating, with every mouthful that is taken, we experience tripti, satisfaction, pushti, bodily strength, and kud naviti, sustained freedom from hunger. Therefore, this point is very subtle. Even every grain of rice or every piece of chapati that I eat, these three things will be experienced. Thus, all humans have the adhika, or the right, to take shelter of devotion. Therefore, along with devotion, three things must be had. That is, one must experience an awakening of tattva-jnana, one should experience renunciation, and one must experience happiness or realization. Therefore, if we are performing sadhana bhakti, but we are not having tattva-jnana awakened within us, nor are we feeling an arousal of detachment from material enjoyment, and neither are we having realization of Bhagavan, then it must be understood we are not really performing sadhana. There are many of us, many of people here who are with Gurudev saying, with us, they are performing parikram, and it seems they are chanting Harinam, but they're not receiving bhakti because their minds are filled with materialistic thoughts and ideas. Therefore, to that degree, one performs sadhana, then to that same degree, one will experience a simultaneous freedom from disturbances and an awakening of good qualities or auspiciousness. Therefore, both occur simultaneously. To which degree it occurs, this is very, very subtle and very hard to understand. Even if we only take one grain of khichdi, still these three things, freedom from, these three things will occur. Satisfaction, bodily strength, and freedom from hunger. In fact, it may come that we will eat so much that if someone says, hey, take a rasgulla, oh no, no, I cannot take. That means one will eat so much, one must become detached even from eating. So this point is very fine and difficult to ascertain. Therefore we should consider within ourselves, I have been chanting and doing sadhu sang for 10, 20, 30, 50 years even, but has shraddha or faith appeared within my heart? Even after so many years, we have not experienced happiness in devotional life, nor is any realization appearing within us, nor is tatvigyan manifesting within us. Thus, according to that degree we perform sadhana bhakti properly, then to that degree we will experience satisfaction, happiness, and realization. But we cannot say we have not achieved anything. For example, Gurudev says, if we can say, put up your hands, who wants to become a queen in Dwarka, like Rukmini, then only one or two may put up their hands. Who wants to go to Dwarka? Let me be dead. Yeah, but therefore we cannot say we have not had any realization. On the other hand, if we say, who wants to become a servant of Radhika? Everyone who wants to become except Peter. So, we cannot say we cannot, have not had any realization, because we can understand our goal is to become a servant of Radhika. But really, only a person who is performing sadhana bhakti properly, they can really feel it and really desire it. Therefore, what is the constitutional position of bhakti? What is the sarupa of bhakti? We have heard that bhakti has no material cause. Because she is independent, she can appear in the hearts of anyone. Even sinful persons, she may appear, and even qualified persons like the husbands of the Vedic, like the husbands of the Yajnapatis, bhakti did not appear in their heart. Bhakti does not depend on intelligence, strength, good looks, or wealth. Bhakti depends on one thing. What is that? She depends on shraddha or faith. Therefore, this is the main subject of this book, Madhurikaramini. What are the stages of devotion? We should know that saranagati or surrender is not the first stage, rather it is simply the doorway to bhakti. The first step in order to enter the temple of bhakti is called shraddha. Therefore, by constitution, everyone is qualified for this devotion. Whether they are women, men, even sinful persons like Jagai Madai or Ajamil, all are qualified for bhakti if they possess the qualification of faith or shraddha. Even Americans are qualified. They are hearing something and they have come here with faith to achieve something. Therefore, this is evidence. Chaitanya Mahaprabhu has said, Sradhavan Janamaye Bhakti Adhika. The qualification for bhakti is shraddha. There is no other material qualification. Therefore, all the species of life, human beings are the most qualified for this. And all classes of human beings have a right to bhakti if they can achieve this shraddha or faith. What to speak of bhakti being dependent on faith, even materialistic processes like karma and jnana, you cannot achieve anything without faith in them. Even if you perform home, fire sacrifice, if you give charity, or if you perform austerities without faith, you cannot be successful in them either. Devil Maharaj Patanjali has described faith as being a state where the heart is always happy, the mind is always pleased, where there is no doubt. Therefore, in Paramarthi Jivan, in spiritual life, then the qualification is a little special or more refined. That faith is Krishna is Bhagavan and performing his bhakti is the best of all activities. By performing Bhagavad Bhajan, I will achieve all auspiciousness, I will achieve everything. Therefore, that which causes doubts to be destroyed and joy to appear in the heart, that is called Shraddha. I think Sri Thakur Bhaktivinoda in Annai Sutra has said, Ani Upaya Bhajan Bhakti Mukti Visheshata Sarangas Saranagati, Sarlakshan Saranagati. What is the definition of faith? When the mind is always in a way, always acts in a way which is favorable towards the performance of the limbs of devotion. And that Shraddha, that faith, has six symptoms which are surrender or Saranagati. Therefore, from faith comes all perfection. And all paths rely upon faith for the fulfillment of their desires. And the faith that we require to perform the devotion of Bhagavan, that is special in the sense that it is completely devoid of any touch of the material modes of sattva, raja, tama. It must be completely nirgun or transcendental.
Padmanabh Maharaj wants to make an announcement.
What?
For tomorrow, Pujipat Sridhar Maharaj.
First of all, his sutta.
Tomorrow,
Dev collected.
Tomorrow morning,
Guru Dev, I did not
ask. Pujipat Sridhar Goswami Maharaj appearance day. So after class and after Pushpanjali, tomorrow we'll go to Parikrama our
in morning you will make photo here. Yes.
And
have you collected something? Yes.
And Rakhan Shyam Premananda,
I have told them
after that Premananda
that some sweet rice, some rasagulla and other things
he
will bring. Yes.